जय श्री राम। आज प्रकाश उत्सव में कार्तिक पूर्णिमा पर जब गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, मैं ये प्रयास करने जा रहा हूँ कि रामचरितमानस की चौपाइयाँ आपके सामने रखूँ। ये वो चौपाई हैं जो शायद इतनी प्रचलित नहीं है, या यूँ कहूँ कि मैंने इतनी नहीं सुनी थी, पर जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत शिक्षाप्रद है और इसका प्रचार प्रसार करना मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए ऐसा। मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत आस्तिक भी नहीं हूँ, तो त्रुटियाँ करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यदि मानव जीवन मुझे मिला है तो। तो यदि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये मेरी अल्पमति के अनुसार जो चौपाई का अर्थ मुझे समझ में आया या जो मैंने पढ़ा वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो जिन लोगों की आयु मेरे बराबर है उन्होंने लगभग सभी ने रामानंद सागर की रामायण जरूर देखी होगी या हमारा बचपन उसको देखते हुए बीता है। उसका एक क्रेज होता था देखने का, तो हमने तो फिर भी काफ़ी कुछ समझा उसके उसके द्वारा देखने का मौका मिला, धन्यवाद रामानंद सागर जी का। लेकिन जो 93 के बाद की जनरेशन है, 94 के बाद की जनरेशन है, उनसे जब मैं मिलता हूँ तो उन्हें उतनी नॉलेज रामायण की नहीं है जितनी की उनसे पिछले लोगों की थी। संपाति, जटायु, उर्मिला, इन सब कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने नाम भी नहीं सुना है, और कबंद और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनका बारे में रामायण में बहुत विस्तार से बताया गया है, लेकिन उसके बारे में चर्चा या ज्ञान लोगों को नहीं है। तो जितना थोड़ी बहुत मेरी समझ है मैं आप लोगों के सामने वो बात रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें शायद रामचरितमानस की आवश्यकता है या जिन्हें इसके बारे में समझ नहीं है। आज हम शुरू करेंगे शूर्पणखा से। शूर्पणखा ही क्यों? क्योंकि पूरी रामचरितमानस में जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे बुरा दिखाया गया है वो मुझे शूर्पणखा लगा। क्यों? देखिए, रामायण की एक खास बात है कि इसमें सभी जो पात्र है वो आदर्श पात्र है। भाई कैसा हो लक्ष्मण जी और भरत जी ने बताया, पिता कैसा हो राजा जनक ने बताया, माँ कैसी हो माँ कौशल्या से जानने को मिला, भक्त कैसा हो हनुमान जी से सुनने को मिला या देखने को मिला, तो इवन ज्ञानी कैसा हो। मैं जानता हूँ यहाँ पर रावण को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, कुछ लोग उसे बहुत बुरा मानते हैं, कुछ कम बुरा मानते हैं, कोई बहुत अच्छा मानते हैं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे जैसा मौका मिलेगा तो। लेकिन शूर्पणखा के विषय के बारे में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये माने कि उसका स्वभाव अच्छा था। लेकिन उस पात्र ने भी रामचरितमानस में काफ़ी शिक्षाएँ दी हैं। उनमें से एक शिक्षा या एक खंड मुझे याद है और आज आपके सामने मैं वही रखने वाला हूँ, जिसमें जब भगवान राम और लक्ष्मण ने उसके क्या कहें प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, और बाद में जब वो एग्रेसिव हुई तो उसकी नाक और कान काट दिए गए थे, तो हम सब जानते हैं कि उसने अपने भाई खर और दूषण को बुलाया और युद्ध में वो भी मारे गए भगवान राम के द्वारा। तो उसके बाद वो रावण के पास गए। तो ये जो सीन है या ये जो मैं पंक्तियाँ आपको बताने जा रहा हूँ ये उस समय की है जब वो रावण के दरबार में गई और रावण को झकझोरने के लिए कि वो मेरी सहायता करे उसने जो जो प्रयास किए उनमें ये प्रयास भी है। यहाँ पर उसने कई सारी ज्ञान की बातें कही, वही ज्ञान की बातें अब आपके सामने। आइए जानते हैं रावण से शूर्पणखा ने उस समय क्या कहा। गोस्वामी तुलसीदास ने जब इस घटना का वर्णन किया तो उन्होंने क्या लिखा, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये जो चौपाई आप पढ़ रहे हैं, ये शूर्पणखा के द्वारा प्रस्तुत की गई रावण के आगे। चौपाई कुछ इस प्रकार से है, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सतकर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए, संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नास ही बेगी नीति अस सुनी। अब इसका अर्थ क्या है? इस चौपाई के अनुसार अगर आप राज कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज को मैनेज कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, और आपके पास कोई फ्यूचरिस्टिक प्लान नहीं है, कोई नीति नहीं है उसको लेकर, तो इस तरह के राज का कोई फायदा नहीं होता। उसी प्रकार कहा धन बिनु धर्म, धन आप कमा रहे हैं लेकिन उस धन का उपयोग आप धर्म कार्यों में नहीं कर रहे हैं, दूसरे की हेल्प के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उस धन का भी कोई विशेष लाभ नहीं होता। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, यदि आप कोई सत्कर्म यानी अच्छा कर्म कर रहे हैं और आपके मन में ये भाव है कि ये कर्म मुझसे प्रभु द्वारा करवाए जा रहे हैं, या आप उन कर्मों को हरि को समर्पित करते हैं, प्रभु को समर्पित करते हैं कि प्रभु आपने मौका दिया कि जो मेरे हाथ से ये हुआ, तो वो उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की, तब तो फायदा है। और अगर आप उनको समर्पित नहीं करते हैं तो उन सत्कर्मों का भी अधिक लाभ नहीं है। फिर वो कहते हैं विद्या बिनु विवेक उपजाए, आप पढ़ लिख तो गए हैं, आप हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन आप में उस विद्या का उपयोग करना या उसको कहाँ एग्जीक्यूट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो विवेक नहीं है, या उस ज्ञान को आप सही जगह उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी विद्या का कोई फायदा नहीं। आज के टाइम में जो पढ़ाई स्कूल लेवल पर हो रही है वो आपको ट्रेन तो कर देती है, या यूँ कहूँ वो आपको आपके जो भी स्किल है उसमें पारंगत तो कर देती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कहाँ करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, वो अगर विवेक आप में नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। ऐसी एक पंचतंत्र में भी कहानी आती है जहाँ पे बताया जाता है कि चार ब्राह्मण या पांच ब्राह्मण थे और वो मरे हुए शेर को देखकर उसको जिंदा करने के लिए जाते हैं और कहते हैं हमें उसको जिंदा करने के मंत्र मालूम है, एक कहते हैं मुझे उसकी खाल लगाने का मंत्र मालूम है। तो जिसमें जिसे सबसे कम ज्ञान होता है वो कहता है कि उसका IQ लेवल अच्छा होता है या विवेक उसका अच्छा होता है, तो कहता है इसको जीवित नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टिल वो कहानी हमें शिक्षा देती है कि अगर विद्या बिना विवेक के हुई तो वो कितनी घातक हो सकती है। तो यहाँ पर शूर्पनखा ये स्टेटमेंट या ये चौपाई रावण के आगे बोल रही है, जिससे कि रावण समझे कि उसको किस तरह एक्ट करना चाहिए इस सिचुएशन में। आगे वो बोलती है संगते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते राजा। बहुत ही खूबसूरत लाइन है गोस्वामी तुलसीदास रचित। संगते जति, वो कहते हैं वैरागी पुरुष है और अगर उसको गृहस्थ का या बाकी लोगों का संग मिल जाता है तो उसकी विरक्ति पर उसका कुप्रभाव आता है, उसका नाश हो जाता है। कुमंत्र ते राजा, अगर जो सजेशन देने वाला मंत्री है, मंत्र शब्द से ही मंत्री बना है, तो जो मंत्रणा हो रही है राजा के साथ, जो डिस्कशन हो रहा है, अगर वो नेगेटिव हो रहा है या राजा को गलत सलाह दी जा रही है तो राजा का नाश होता है। मानते ज्ञान, जब व्यक्ति में मान बढ़ जाता है तो उसकी ज्ञान सीखने की ललक या उसके ज्ञान सीखने की जो अवसर होते हैं वो कम हो जाते हैं, ये बताया गया। पानते लाजा, यहाँ पर पान इस्तेमाल किया गया है नशे को, मदरा पान को, तो यहाँ पे उनका कहने का अर्थ यह है कि यदि व्यक्ति किसी प्रकार का नशा करता है, जब वो किसी नशे में होता है तो वो लज्जा का नाश करता है, शर्म उसकी खत्म हो जाती है। प्रीति प्रणय बिनु, प्रीति प्रणय बिनु मतलब आप किसी से प्रेम तो करते हैं लेकिन आप में उसके लिए विनम्रता नहीं है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा प्यार भी किसी काम का नहीं। आई रिमेम्बर काफी साल पहले एक मूवी थी अग्नि साक्षी और दरार, जिसमें दिखाते हैं कि पति पत्नी से बहुत प्रेम तो करता है लेकिन प्रेम का जो इजहार है, जो रिस्पेक्ट है उसके लिए, वो नहीं होती है। तो उस फिल्म का जो आउटकम है वो आप सभी ने देखे होंगे। तो ऐसे प्यार का कोई फायदा नहीं है जहां पर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। मदते गुनी, इसका क्या अर्थ है? अगर आप में मद आ गया, अगर आप में अहंकार आ गया तो आपके गुणों का नाश होता है। नास ही बेगी नीति सुनी, का अर्थ है उन सब का नाश हो जाता है, ऐसी नीति मैंने सुनी है। किसका नाश? संग से विरक्त व्यक्ति का, कुमंत्र से राजा का नाश हो जाता है, मान आने से ज्ञान का नाश होता है, मदिरा पान से लज्जा का नाश होता है, प्रीति का नाश होता है अगर प्रणय या नम्रता नहीं हो, तो गुण का नाश होता है यदि व्यक्ति में अहंकार आ जाए। तो ये वो कुछ चौपाई थी जो शूर्पनखा ने रावण से कही और जिसके बाद रावण जागा और उसने उसकी मदद के लिए आना स्वीकार किया। आशा करता हूँ ये चौपाई आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, और क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, आपकी इसके बारे में क्या राय है, या जो रामचरितमानस के पाठ करते हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, जिससे हमारा भी ज्ञानवर्धन हो। मिलते हैं अगली बार किन्हीं और चौपाई के साथ। जय श्री राम।